नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी।
आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद नौवा अध्याय नौवा, इनका शीर्षक है अंशुमान की वंशावली और श्लोक संख्या नंबर 30। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। स अयम् ब्रह्म ऋषि वर्य ते राज ऋषि प्रवरात् विभो कथम अरहति धर्मज्ञ वधम पितु इव आत्मजः सोयं ब्रह्म ऋषि वर्यते सोयं ब्रह्म ऋषि वर्यस्ने राज ऋषि प्रवरात् विभो राज ऋषि प्रवरात् विभो कथम अर्हति धर्मज्ञ कथम अर्हति धर्मज्ञ वधम पितुर इवात्मज वधम पितुर इवात्मज सोयं ब्रह्म ऋषि वर्यस्ते सोयं ब्रह्म ऋषि वर्यस्ते राज ऋषि प्रवात् विधु राज ऋषि प्रवरात् विभो कथम अर्हति धर्मज्ञ कथम अर्हति धर्मज्ञ वधम पितुरिवात्मज वधम पितुरिवात्मज
Yeah.
शब्दार्थ इस प्रकार है, स व ब्राह्मण अयम यह ब्रह्म ऋषिवर्य। न केवल ब्राह्मण अपितु ऋषियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, ते तथा तुमसे राज ऋषि परव्रत प्रवरात, जो सारे राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, विभो हे राजा के स्वामी, कथम कैसे अर्हति योग्य हैं, धर्मज्ञ हे धर्म के ज्ञाता, वधम व वद पितु पिता द्वारा, इव सदृश्य आत्मज पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की। हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत हो। जिस तरह पुत्र कभी भी अपने पिता द्वारा वध नहीं बाध्य नहीं है, उसी तरह इस ब्राह्मण की रक्षा राजा द्वारा होनी चाहिए, न कि वध। तुम जैसे राज ऋषि द्वारा इसका वध किस तरह उचित है, तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद जी बताते हैं। राज ऋषि शब्द ऐसा राजा का सूचक है जो ऋषि तुल्य आचरण करता है। ऐसा राजा नरदेव भी कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रतिनिधि माना जाता है। क्योंकि राजा का कर्तव्य ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा के लिए शासन करना है, अथवा वह कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहता। सामान्यतः ब्राह्मण स्त्री शिशु वृद्ध या गाय को दंडनीय नहीं माना जाता, अथवा ब्राह्मण पत्नी ने राजा से प्रार्थना की कि वह इस पाप कृत्य से बचे। होम ज्ञाने नतिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं तथापि स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपथगमनम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम
साद्वैतम साद्वदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में अंशुमान की वंशावली के इस अध्याय में हम पिछले क्लासों में सुन रहे हैं कि किस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने सौद्यास जो राजा जो था उनको श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में कुछ कार्यकलाप करने के लिए उन्होंने कुछ त्रुटि कर दी थी, और इसी कारण से वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम नरबक्षी बन जाओ। और इस कारण से वो जो राजा जो था उनको राक्षस का रूप धारण करना पड़ा। तो एक समय की बात थी कि ब्राह्मण पत्नी अपने पति के साथ वनों में उनके संग में होने के कारण उसी समय ये नरबक्षी जो राक्षस जो था उन्होंने उसके पति देव को उनसे छीन लिया, और पत्नी देखकर हताश हो गई, शोकाकुल में पड़ गई। और उस समय उन्होंने केवल एक ही, अब उनके पास एक ही हथियार था, वो था वाणी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं अब अपने वाणी से तो कम से कम उनको समझाऊंगी। तो अब यहां पर ब्राह्मण पत्नी, वो जो नरबक्षी जो राजा जो बन चुके थे, अब उनको उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा कैसे मेरे जो पति जो है, पहले तो बताते हैं कि कैसे मेरे पति उच्च कुल के उच्च वर्णाश्रम धर्म में उच्च स्तर पर आते हैं, जो कि ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण केवल नाम के नहीं वैसे गुणों से भी हैं। और अब आज के श्लोक में बताया जा रहा है, ब्राह्मण पत्नी उपदेश दे रही है कि ये जो क्षत्रिय, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि मेरे पति को संरक्षण करें, क्योंकि मेरा पति ब्राह्मण है। तो वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये जो चार जो प्रणाली है, इसमें क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना। इसलिए क्षत्रियों की तुलना की गई है भुजाओं के साथ और ब्राह्मणों की तुलना की गई है मस्तक के साथ। तो भुजा जो होती है वह हमेशा शरीर को संरक्षण करता है, और वो भुजा के द्वारा मस्तक सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह समाज में क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण सुरक्षित रहते हैं। और क्योंकि तुम राजा के पोस्ट पर या राजा के स्तर पर होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम मेरे पति का देखरेख करो। श्लोक प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि ब्राह्मण जो होता है वो कभी दंडनीय नहीं होता। ब्राह्मण शिशु वृद्ध और गाय और स्त्री, ये जो समाज में इनको दंडनीय नहीं माना जाता। तो जैसे हम देखते हैं रामायण में उन लीला में, जब प्रभु रामचंद्र जी के राज्य में जब कुशल मंगल चल रहा था, किसी का भी कोई शिकायत नहीं था। एक समय की बात थी कि वहां पर एक घंटी बांधा गया था, जिस घंटी को बजाना मतलब उसके पास उस राज्य में कुछ शिकायत है ऐसे माना जाता था। तो वहां पर एक समय घंटी बजा, तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जाओ जाकर देखो क्या हुआ। तो लक्ष्मण ने जब जाकर देखा तो वहां पर एक कुत्ता था और कुत्ता घंटी बजा रहा था और कुत्ता का जो सर जो था फूट चुका था, लहू लुहान हो रहा था और यहां पर कुत्ता वो घंटी को बजाकर अपनी कुछ शिकायत लेकर आए थे। तब प्रभु रामचंद्र जी ने उसको उस कुत्ते को राज्य में आने के लिए अनुमति दिया। अब कुत्ता यहां पर प्रभु रामचंद्र जी का राज्य इतना सुंदर ढंग से चलता था कि वहां पर पशुओं को भी सही हिसाब या सही इंसाफ प्राप्त होता था। और यहां पर एक कुत्ता आया और एक कुत्ता आकर अपने शिकायत करने लगा। तब उस समय प्रभु रामचंद्र जी पूछे कि तुम्हारा ये स्थिति कैसे हुआ, किसने किया तुम्हारा ये स्थिति। तो कुत्ता कहने लगा एक ब्राह्मण ने मेरे साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया, एक ब्राह्मण ने मेरा मस्तक फोड़ दिया। तब प्रभु रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण को बुलाया तो उस ब्राह्मण से पूछा कि तुमने इस प्रकार कैसे जरूरत की इस कुत्ते के साथ इस प्रकार उनके साथ व्यवहार करने का क्या कारण है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ भोग पात्र लेकर जा रहा था, भगवान को भोग लेकर जा रहा था, उसी समय ये कुत्ता बीच में आ गया और कुत्ता बीच में आया तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध में मैंने इनके मस्तक को फोड़ दिया, पत्थर मारा तो उनका मस्तक फूट गया। तब अब राजा प्रभु रामचंद्र जी ने यह स्थिति सुना तो रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा कि ठीक है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं ब्राह्मण को क्या दंड दूं। तो इन्होंने कहा उनको मठादेश बना दिया जाए। तो कुत्ते ने कहा उनको मठादेश बना दिया जाए उस मंदिर का। क्यों? तो जब पूछा गया तो कुत्ते ने कहा क्योंकि इन्होंने अपराध किया है और मैं जानता हूं कि ये अपराधी हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने भूख को सह नहीं पाता और अपने भूख को नहीं सह पाता, इसलिए जब मठादेश बन जाएगा तो और लोभी बनेगा और जब और लोभी बनेगा तो फिर इसका दूसरा जन्म कुत्ते का ही होगा। और इस प्रकार उनको दंड दिया उनके स्तर को बढ़ाकर। तो इस प्रकार ब्राह्मण जो होते हैं उनको इस प्रकार हथियार के द्वारा कोई दंड नहीं दिया जाता। और यहां पर ये जो नरबक्षी जो राजा जो नरबक्षी बन चुका था वशिष्ठ मुनि के द्वारा, अब वो ब्राह्मण को खाने जा रहा था तो पत्नी कह रही है कि तुम्हारे लिए उचित नहीं देता, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें पूरे समाज का देखरेख करना चाहिए, ब्राह्मण को तो विशेष तौर से। तो और यहां पर क्षत्रिय के गुणों को विषय में बता रहे, क्षत्रियों के गुणों के विषय में चौथे स्कंद में जहां पर बहुत सुंदर ढंग से ब्राह्मण लोग ब्राह्मण सारे ऋषि लोग एकत्रित मिलकर वो राजा वेण को समझाते हैं कि वास्तविक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होना चाहिए। जय श्री श्री राधा की, थारे भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो बताते हैं कि किस प्रकार एक क्षत्रिय के गुण होने चाहिए, क्षत्रिय के अंदर क्या क्या गुणों से हम जान सकते हैं कि यह क्षत्रिय यह राज ऋषि कहा जा सकता है। क्योंकि राजा के पोस्ट में बैठने वाला केवल राजा ही नहीं, साथ में ऋषि भी माना जाता है, इसलिए राज ऋषि, उस राजा को राज ऋषि कहा जाता है। तो ऋषि भी, ऋषि के भी गुण होने चाहिए उनके अंतर्गत। तो बताते हैं कि राजा वेण जो था वो इतना परेशान करते थे अपने सारे राज्य को, बचपन से ही उनका वैसा स्वभाव था। राजा अंग जो थे वो अपने पुत्र से परेशान होकर संन्यास ले लिया था। क्योंकि उनका जो पुत्र जो था राजा, जो कि राजकुमार वेण, जब छोटे थे उस समय वो उनके इतने शिकायत आते थे कि यहां तक कि वो जब बच्चे लोगों के साथ खेलते थे तो दो बच्चे का मस्तक पकड़कर पीट पीट कर ऐसे फोड़ते, जब तक वो मरता नहीं था तब तक वो मारते ही रहते थे। ऐसे कई कंप्लेन भी आते थे कि इस बच्चे को आज मार डाला, उसको खत्म किया। ऐसे सुन सुनकर राजा अंग इतना परेशान हो गया अपने पुत्र से कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल ले लिया, जंगल में चले गए और संन्यास ले लिए। और यहाँ पर फिर उसके पश्चात यहाँ पर राजा वेण को राजा के पोस्ट में बिठाया गया। अब जब राजा वेण जब राजा के पोस्ट पर जब बैठे तो जैसे ही बैठा तो उसी समय जितने भी चोर डाकू थे सभी लोग वहां से भाग गए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा चोर आ गया है तो हमारा धंधा चौपट हो गया, और सभी लोग घबरा कर उस नगर को छोड़कर चले गए। और इन्होंने इतना अत्याचार किया और तरह तरह से सारे यज्ञ हवन सब बंद करा दिए और सबको परेशान करने लगे और किसी को भी आदर सम्मान नहीं देते थे। कहा गया, स आरूढ़ नृपस्थानम उन्नतम स्थम विभूति भी अवमानेना महाभाग। अवमानेना, महात्माओं का जो ब्राह्मण जो थे उन लोगों का अपमान करने लगे, और ऐसे अपमान करने के कारण उनके सारे ऐश्वर्य सब धीरे धीरे क्षीण होने लगा। अब जितने भी ऋषिगण थे, ब्राह्मण जितने भी थे, वो तो अपने हथियार को, उनका एक ही हथियार है, वो है मंत्र। तो वो आए, सभी ब्राह्मण लोग मिलकर मीटिंग किए और कहा कि हम राजा को जाके समझाएंगे, उनको समझाएंगे कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं। और ये इस प्रकार अगर उन्हें समझाएंगे तब उनके अंदर अगर सुधार हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो सारे ब्राह्मण लोग मिलकर तय कर उनके पास गए। अब छह गुणों को बताते हैं कि क्षत्रिय का क्या गुण होना चाहिए। तो बताते हैं, नृपवर्य निबोधयी तत् यत्तत् विज्ञापयामो भो आयुर्श्री बल कीर्तिनां त्वत्तत् विवर्धनम्। तो कहते हैं, नृपवर्य निबोधयी तत् यत्तत् विज्ञापयामो भो। जो व्यक्ति जो विज्ञा नृपवर्य यानी कि एक राजा, वो अगर ब्राह्मणों का जो जो ज्ञान से परिपूर्ण है उनको अगर आदर सम्मान देता है, उनकी बात को अगर सुनता है, तो आयु श्री बल कीर्ति ये सब उसका विवर्धनम, ये सब उसकी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो बड़ों को आदर देने से हमारे अंदर ये सारे गुण की वृद्धि होती है, और बड़ों को निरादर करने से हमारे अंदर ये सारे वस्तु घट जाती हैं। तो हमारे जो ऐश्वर्य जो संपत्ति सुंदरता ज्ञान ये सारे वस्तु नष्ट हो जाती है जैसे ही हम बड़ों का निरादर करते हैं। और यहाँ पर क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों के मुख से वो उपदेश को सुने और उसी के अनुसार क्षत्रिय अपने राज्य को चलाता है। और इस प्रकार यहां पर सारे ब्राह्मण बता रहे हैं कि हे राजा, तुम्हें इस प्रकार राज्य करना है, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के अंतर्गत या ब्राह्मणों के उपदेश को सुनकर। जो आज के तारीख में जो राजा है ये वास्तविकता में राजा के लायक नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी जो कंट्री है वास्तविक में डेमोक्रेसी नहीं, डिमन क्रेजी है। क्योंकि जितने भी गधे हैं वो सारे गधे का झुंड मिलकर एक बड़े गधे को चुनते हैं, तो एक बड़ा गधा राज्य में खड़ा हो जाता है। और इसलिए आज के तारीख में जो राजा है वो केवल लोगों को शोषण करने के लिए बैठे हैं। इसलिए कहा गया है, चाणक्य पंडित बताते हैं, जैसे राजा वैसे प्रजा। आज की जो स्थिति है उसी प्रकार है कहते अश्वयान जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपति वस्त्रम जलाक्ति नाम धगतम यथा राजा तथा प्रजा। तो कहते अश्वयाम अश्वयाम जायते वत्सो, एक घोड़ा, अगर एक घोड़ा अगर एक गाय को जन्म दे सकता है तो क्यों नहीं, पानी के अंदर अग्नि जल सकती है। ये बताते जैसे राजा वैसे प्रजा। तो इसके पीछे चाणक्य पंडित एक कहानी बताते हैं ये श्लोक के पीछे, और वो क्या बताते हैं कि एक राजा था, उसके कई मिनिस्टर थे, उसमें से एक मिनिस्टर के प्रति उनका ज्यादा झुकाव था और ज्यादा उन पर ही उनका भरोसा था, तो बाकी जितने मिनिस्टर थे सब ईर्ष्या करने लगे इस मिनिस्टर के प्रति। तो बाकी सब मिनिस्टर मिलकर कुछ योजना रचे। क्या योजना रचे कि कैसे राजा का जो श्रद्धा इस पर है इसको तोड़े। और वो तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किए कि एक घोड़ा एक घोड़ी वह बच्चे को जन्म देने वाली थी, गर्भवती थी, उसी समय इन्होंने क्या किए, बच्चा तो दे दिया, बच्चा जैसे ही दिया तो उन्होंने उस घोड़ी ने जो घोड़े को बच्चा दिया वो घोड़ा हटाकर गाय रख दिया, ये बाकी मिनिस्टर लोग मिलकर। तो राजा ने पूछा अपने प्रिय मिनिस्टर से कि घोड़ी ने किसको जन्म दिया, तो इन्होंने कहा घोड़ी ने तो घोड़े को ही जन्म दिया होगा, कुछ और तो दिया नहीं है। तो बोला चलो देखते जाके। तो गए सारे मिनिस्टरों के साथ, तो जाकर देखा तो घोड़ी ने घोड़े को जन्म नहीं दिया, गाय को जन्म दिया। तो राजा को सारे मिनिस्टर कहने लगे देखो ये तुम्हारे साथ छल किया है, तुम कैसे इस पर विश्वास करते हो। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, तो राजा ने अपने मिनिस्टर को कह दिया कि तुम जिस राज्य को छोड़कर चले जाओ तुम्हें हम तिरस्कृत करते हैं। और इस प्रकार उस राज्य से उनको इस्तीफा देने को कह दिया। और इन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए तो मैं चला जाऊंगा। तो कुछ दिन बीत गया मगर ये जा ही नहीं रहे थे। तो कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने पूछा उस मिनिस्टर को कि क्यों तुम अभी तक गए नहीं। तो कहने लगे मेरे घर पर एक हादसा घट गया। बोला क्या, मेरा घर पूरा जल गया और जलकर राख हो गया, अब मेरे घर की जितनी संपत्ति है सब खत्म हो चुकी है, तो आप मुझे भर कर दो। तो बोले कैसे जल गया। वो ऐसे हुआ कि मैंने पानी के अंदर कुछ कपड़े को भिगो के रखा था और बत्ती जो थी वो बत्ती उस पानी के अंदर गिर गया, और वो पानी के अंदर गिर के वो कपड़े को आग लग गया, उस कपड़े से बाल्टी से पूरा घर को आग लग गया और पूरा घर जलकर खराब हो गया, भस्म हो गया, तो आप कुछ करिए। तो राजा के पल्ले नहीं पड़ रहा था क्या बोल रहा है। तो राजा क्या कह रहे हो तुम, नहीं अब पानी में कैसे आग लग सकता है। तो इन्होंने कहा वत्सयाम जाए तो अश्वयाम जाए तो वत्सो, अगर घोड़ा अगर वत्स को या गाय को जन्म दे सकता है, मिथ्या वदति भूपति वस्त्रम जलाग्निनाम धक्तम, तो पानी के अंदर आग क्यों नहीं लग सकता है, जैसे राजा वैसे प्रजा। तो इस तरह जो आज का जो डेमोक्रेसी जो है वो इसी प्रकार है कि जितने भी प्रजा के अनुसार ही राजा अनुशासन कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं सारे गधे लोग मिलकर एक बड़े गधे को चुने हैं। तो वैसा राजा यानी कि राजा के साथ ऋषि राज्य ऋषि, तो ये पहला गुण होना चाहिए कि उनको एक ब्राह्मण के अंतर्गत उसे सारे उपदेश को सुनना चाहिए। फिर दूसरा गुण बताते हैं धर्म आचरित पुंसाम वान मया काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरती अथ अनंती असंगीनाम। तो कहते हैं धर्म आचरित पुंसाम, उस राजा को धर्म का आचरण करना चाहिए। ऋषि कब होगा, जब धर्म के आचरण को करेंगे। तो धर्म धार्मिक होना चाहिए। वान मया काय बुद्धि भी, कैसे, वाणी से, मन से, काया से और बुद्धि से, ये सारे चीजों से उसको पूरे धर्म का पालन करना चाहिए। लोकान विशोकान वितरती, जितने भी विशोकान ये जो भौतिक जो संसार है जो कष्टदायी है, अथ अनंती वितरती, यानी कि इसको वो लांग कर वो क्या प्राप्त करेगा, अथ अनंती असंगीनाम, वो जो अनंत सुख को प्राप्त करेगा अगर वो इस प्रकार धर्म का आचरण करता है या धर्म का पालन करता है। तो राजा का इस प्रकार कर्तव्य होता है। यहां तक कि श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण जब राजा का रोल कर रहे थे तो भगवान कृष्ण भी द्वारिका में एक राजा किस प्रकार होना चाहिए धर्म का आचरण करके बताते थे। सुबह सुबह ब्रह्ममृत अवस्था में उठ जाते थे और उठने का जो उनका बहुत अच्छी तरह उसमें वर्णन है कि किस प्रकार पारिजात फूल जब खिलता था सुबह सुबह तो उनके सुगंध को सब बम्बल भी उनको सुगंध आता था, तो उनको जब सुगंध आता था तो उन लोग ध्वनि अपना शुरू करते थे, और जब इन लोग जब ध्वनि शुरू करते थे तो वहां पर जितने मुर्गे थे तो उनको आवाज सुनाई पड़ता था, तो मुर्गे भी समझ जाते थे कि सुबह हो गया, तो मुर्गा अपना ध्वनि शुरू करता था, और जब मुर्गा अपना ध्वनि शुरू करता था तो कृष्ण की जो दृष्टि वो खुल जाती थी, अभी सुबह हो गया। तो ये विशेष प्रकार का अलार्म था, ऐसा अलार्म कि जिसको हम बंद नहीं कर सकते, दूरी है। तो वैसा मुर्गा के ध्वनि से कृष्ण उड़ जाते थे और उठकर अपने शारीरिक जो कार्य है उस वो करने के पश्चात, स्वच्छ इत्यादि होने के पश्चात भगवान कृष्ण फिर अपने ध्यान में लग जाते थे, अपने अंदर ही ध्यान करते थे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे, दो पेज लंबा परपोट लिखते हैं कि कैसे हमें अपने अंदर ध्यान नहीं लगाना है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण कर रहे हैं। और इस प्रकार कृष्ण उसके पश्चात भर्द्वम भर्द्वम दिने दिने इतना दान देते थे कि 14 लाख गाय को रोज दान देते थे ब्राह्मणों को। तो ये क्षत्रियों का कर्तव्य है। इस प्रकार अपने आचरण से कृष्ण स्वयं शिक्षा देते हैं कि क्षत्रिय कैसे होने चाहिए, दानवीर। जब उस समय की बात थी कि जब कर्ण जब अपने अंतिम समय पे प्राण को त्याग ही रहा था, उसी समय करण को कृष्ण ने कहा कि करण तुमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो करण ने कहा मैं क्या करूं, मेरा पूरा जीवन ऐसी बर्बाद किया, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारे पास सोने की दांत है तो सोने का दांत मुझे दे दो। तो करण इतना दानवीर था कि जो कि इनके अंदर ऐसे क्षत्रिय के गुण थे कि उन्होंने मरने का अंतिम समय पर उन्होंने एक पत्थर लिया, अपने दांत को तोड़ दिया और वो अर्पण किया कृष्ण को। कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो अब ऐसे क्षत्रिय का गुण होता है दानवीर। तो उसे धर्म आचरित पुंसाम वान मया काय भूति भी। इस प्रकार एक राजा का स्वभाव है होना चाहिए या एक राजा के गुण होने चाहिए, ये सारे ब्राह्मण लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं। आज के तारीख में जितने भी नेतागण हैं जो तथाकथित अनुशासन के पोस्ट में है, उनके अंदर तो कोई धार्मिक तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, इलेक्शन के दिन तो बड़ा बड़ा लंबा लाल तिलक लगा के आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता कि ये धार्मिक है क्या क्या है। तो वैसे लोग वास्तविकता में धार्मिक नहीं कहा जाता। फिर आगे कहते हैं सत्यमाम विनश्यते वीर्य प्रजानाम क्षेम लक्षण यस्मिन विनश्यते नृपतिर ऐश्वर्यात अवरोहति। फिर तीसरे गुण को बताते हैं, कहते हैं कि राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रजानाम क्षेम लक्षण, प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। कैसे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसके आध्यात्मिक प्रगति के विषय में राजा को सोचना चाहिए। यह राजा का कर्तव्य होता है कि कहीं वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो गिर तो नहीं रहा है, और ऐसे करने से ऐश्वर्यात अवरोहति, उनके ऐश्वर्य की वृद्धि होती है उस राजा की। कि अगर वो राजा सबको धार्मिक कार्यकलाप में लगा के रखता है, तो आज के तारीख में जो नेतागण है उनके पास जाकर हमें विनती करना पड़ता है कि यहां पर कुछ कीर्तन करने के लिए आप अवसर दो।
जबकि राजा को स्वयं कहना चाहिए कि चारों दिशाओं पर केवल धार्मिक कार्यकलाप होना चाहिए, और वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इस तरह राजा जो है वो प्रजाओं को संरक्षण करना चाहिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर। जो आज के तारीख में जितने भी जनसंख्या है वो सरकार के द्वारा अनुशासन किए जा रहे, और वही सरकार क्या कर रहे कि लोगों को यह शिक्षा दे रहे कि कैसे भगवान नहीं है, जो कि राम के जो सेतु जो बनाए गए थे उसको कहते हैं कि वो राम का सेतु था, राम करके व्यक्ति नहीं था, केवल एक काल्पनिक है उनके लिए सरकार के लिए। लेकिन जब कोर्ट में किसी को लाया जाता है तो वही रामायण को रखते हैं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो सरकार ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और वही सरकार पूरे वैज्ञानिक लोगों के पीछे, वैज्ञानिक लोग क्या यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे सब कुछ, हमारी जो पूर्वज जो है सब बंदर से आए, इसीलिए आज के तारीख में जितने भी स्कूल कॉलेज है ये केवल कसाई खाने के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि इसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, जबकि यह शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान है ही नहीं। और वो भी इन लोग कैसे इतिहास खोज रहे हैं, हमारे पूर्वजों को देख कर कि हमारा पूर्वज जो था वो बंदर था, और वो बंदर कैसे, हमारा पूर्वज बंदर कैसे था, तो कुछ हड्डियों को बिन कर, कुछ फीट जमीन पे खोते कुछ हड्डी मिलता है तो कहते कि हमारा पूर्वज ये था। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो खोद कर हड्डी को ढूंढ के निकालना ये तो कुत्ते का काम है, ये कुत्ते लोगों का काम है कि उन लोग खोद कर हड्डी को बिनते हैं। और आज के तारीख में जितने भी वैज्ञानिक है सब वही है। श्री प्रभुपाद जब संन्यास अपने कुछ सन्यासी शिष्यों के साथ जब आ रहे थे संन्यास डंडा लेकर, तो एक बेवड़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया, प्रभुपाद के सामने आकर पूछने लगा ये डंडा किसके लिए है। तो प्रभुपाद कहने लगे सारे कुत्तों को भगाने के लिए। तो उससे यह शिक्षा दे रहे प्रभुपाद कि जितने भी तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्तर पर जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं सब कुत्ते के समान है, उनको भगाने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत जैसे संन्यास डंडा की आवश्यकता है। तो वैसे प्रचार के द्वारा, वैसे प्रचार आंदोलन के द्वारा ऐसे जितने भी नास्तिक सिद्धांत है इसका हम ध्वंस कर सकते हैं। और इस प्रकार यहां पर ये जो तीसरे गुण को यहां पर बताया जा रहा है कि एक राजा का कर्तव्य ये होना चाहिए कि सभी लोग को आध्यात्मिक स्थिति से सबको उन्नत करना। फिर चौथे गुण को बताते हैं राजानाम अश्वथ्य अमाथ्यभ्य चौराध्यभ्य प्रजानृप रक्षण यथा बलिम गृणन इहते प्रिय प्रत्य च मोदते। तो कहते रक्षण यथा बलिन गृणन, वो जितने भी राजा जो है उनका एकमात्र कर्तव्य है कि जितने भी चोर डाकू जितने भी हैं सबके सबको बराबर दंड देकर समाज की या प्रजा की रक्षा करे, ये राजा का कर्तव्य होता है। और कैसे बलिन गृणन, उनसे टैक्स कलेक्ट करके, जितने भी कर है वो कर को ग्रहण कर उनको बराबर सजा देकर, उन ये राजाओं का कर्तव्य होता है। यूएसए में एक घटना घट गई कि एक चोर जो था वो गया था किसी के घर पर चोरी करने। अब जब चोरी करने के लिए गया तो ऊपर के माले पर था उनका घर, तो बड़े मुश्किल से ऊपर तक पहुंचा, और पहुंचा तो वहां पर जो खिड़की जो था उस खिड़की का जो बार जो था सलिया वो ऐसी लगा के रखा था। तो उन्होंने सोचा ये पकड़ में आ गया, तो उसको पकड़ लिया और बाकी सहारा छोड़ दिया और वो छूट गया और सीधा नीचे जाके गिर गया। अब नीचे गिर गया तो उनका टांग टूट गया। अब जब टांग टूट गया तो फिर ये गया कंप्लेन करने कि इनका खिड़की सही नहीं था, और कोर्ट में बुलाया गया। और कोर्ट में
उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने चोरी करने आया था, उस व्यक्ति को ये जो घर का जो मालिक है उसको हर महीना $1500 दो साल के लिए भरने का जुर्माना कहा गया, क्योंकि तुमने अपना खिड़की ठीक से नहीं लगाया। यानी कि वो बेचारा ओवर टाइम करते वक्त कुछ उसका हादसा घट गया, एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो ये आज के जो तथाकथित राज शासन कि चोर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, चोर को भी सहयोग, जो जितने भी सरकार के जितने भी नियम कायदा है केवल इसीलिए कि कैसे करप्शन और बढ़े। तो जो नियम बनता है उसके साथ नियम तोड़ने का भी मार्ग बनता है साथ ही साथ, तो वो वास्तविक में राजा के स्तर पर नहीं है। तो राजा यानी कि वो जो सबसे कर लेकर सारे प्रजाओं को चोर डाकुओं से रक्षा करता है, ये चौथा गुण। पांचवा गुण बताते हैं, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः यज्यते सेवन धर्मेना जनैर वर्णाश्रमविता। तो कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि जितने भी प्रजा के लोग हैं वो ठीक ठीक वर्णाश्रम आचरण वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं क्या नहीं, और उस वर्णाश्रम धर्म में कृष्ण की कृष्ण को माध्यम रखकर इन लोग कार्यकलाप कर रहे हैं क्या नहीं, ये राजा का कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो आठ वर्णाश्रम धर्म, इसके अंतर्गत सारे लोग आ रहे हैं क्या नहीं, ये राजा को बराबर ध्यान देना चाहिए इस कार्य में। और फिर उसके बाद जो छठा गुण जो बताते हैं, तस्य राजन महाभागा भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। सारे प्रजा के लोग, जो कि अंतिम गुण यहां पर बताया गया कि जितने भी प्रजा के वासी जितने भी लोग रह रहे ये सभी लोग कृष्ण की उपासना कर रहे क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तिष्ठति निज शासने, उसके द्वारा अगर कोई भगवान की, सभी लोग भगवान की पूजा में अगर लगे हैं तो इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होकर उस राजा पर कृपा बरसाएंगे, तो वो राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा जाएगा। इस प्रकार ये जो राजा जो है वो हमेशा अपने ब्राह्मण के अनुगत रहकर वो पूरी प्रजाओं को सबको कृष्ण भक्ति में लगाने का उनका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। जैसे थाने में एक सुनने में आता है कि वहां पर एक बड़ा दुर्गा मंदिर बनने के लिए सरकार पूरी मदद कर रही है, तो ये जो सरकार है इसमें खूब सहयोग कर रही है देवी देवताओं की उपासना में, जबकि वहां पर प्रचार करने के लिए पूछना पड़ता है लोगों के पास, दर दर जाकर पूछना पड़ता है कि यहां पर हम सत्संग कर सकते हैं क्या, लेकिन देवी देवताओं की उपासना के लिए सरकार पूरी तरह अनुमति दे रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी में होता क्या है, पूरा सरकार उनको पूरा सहयोग करते हैं और वो गणेश चतुर्थी जो कि लोगों को और दूषित कर रहा है और केवल समाज में दूषित वातावरण को उत्पन्न कर रहा है, और जितने भी तथाकथित गरबा इत्यादि ये जो भी कुछ है ये सब केवल समाज में दूषित वातावरण उत्पन्न कर रहा है और सरकार इसको सहयोग कर रही है, जबकि सरकार का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए कि सभी लोग कृष्ण भक्ति में लग रहे हैं कि नहीं, ये वास्तविकता में गुण होने चाहिए एक क्षत्रिय का जो अनुशासन के स्तर पर बैठे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद 1975 में उन्होंने ऐसे 10 पॉइंट लिख कर दिए इंदिरा गांधी को कि क्या होना चाहिए हमारे लिए, उन्होंने 10 रेजोल्यूशन लिख कर दिए इंदिरा गांधी को। तो कहते हैं कि 500 फॉरिन लोगों को या विदेशी लोगों को भारतीय वीजा मिलना चाहिए, और जितने भी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर बैठते हैं, जो जो अनुशासन के स्तर पर जितने भी इलेक्शन जो इलेक्ट कर जो बैठे गए हैं, वो सभी लोग ब्राह्मण इनिशिएटेड रहने चाहिए, सभी ब्राह्मण रहने चाहिए, यानी कि सेकंड इनिशिएटेड। और उनका पार्लियामेंट शुरू होना चाहिए कीर्तन से, जय राधा माधव से। और इंदिरा गांधी जो है वो रानी रहनी चाहिए, और इनके जो पुत्र है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और जितने भी कसाई खाना है सब कसाई खाना को बंद कर दिया जाए, यानी कि जो खाने का जो अगर किसी को अति उतावला है तो घर के अंदर खाएंगे, बाहर नहीं। बाहर जितने भी कसाई खाना अब तो दिन ब दिन खुलते जा रहे, लोगों का करियर वही बन रहा है और लोग खूब धंधा कर रहे उसमें, केवल कसाई खाना खोलते हुए। और साथ साथ में जितने भी बियर बार है जो रेस्टोरेंट, ये सब बंद कर दिया जाए। और इस प्रकार जितनी भी वैश्यावृत्ति है इस कार्य को समाज में बंद कर दिया जाए। और केवल एक ही गीता होना चाहिए, वह भगवत गीता यथारूप, और कुछ गीता नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि जितने भी इस्कॉन में इस्कॉन के द्वारा जितने भी एक्टिविटीज हैं, ये सारे एक्टिविटीज को या इस सारे कार्यों को सरकार सहयोग करना चाहिए इस आंदोलन को बढ़ने के लिए। और हरे कृष्णा आंदोलन ये पूरे विश्व भर में फैलने के लिए इसे अनुमति दे दिया जाए। और इस प्रकार उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने 10 पॉइंट लिखकर दिए थे इंदिरा गांधी को, अकस्मात उनके दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वरना बहुत कुछ हो सकता था श्रील प्रभुपाद के। इस प्रकार वो जो राजा जो है उसे इस प्रकार आध्यात्मिक कार्य में सभी को लगाने का एकमात्र राजा का कर्तव्य होना चाहिए। तो वैसे क्षत्रिय का गुण है ब्राह्मणों के अनुसार उसके अनुसार उसको कार्यकलाप करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को समाज का मस्तक माना गया है। जो मस्तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऑफिस नहीं जाता है तो कोई पूछा क्यों नहीं आए, नहीं पेट दुख रहा था या हाथ दुख रहा था, तो ठीक है, वो उसके लिए एक्सक्यूज है। लेकिन कोई कहेगा मेरा थोड़ा बुद्धि खराब हो गया था इसलिए आया नहीं, तब तो फिर ये बॉस बोलेगा कल से तू बाधा बत। क्योंकि बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो इसीलिए समाज का जो महत्वपूर्ण भाग जो है ब्राह्मण, इससे व्यक्ति को यानी कि ब्राह्मणों को सभी तरह से रक्षा करने का ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। और इस तरह यहां पर ये ब्राह्मण पत्नी कह रही है कि तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय के पोस्ट पर हो, तो तुम्हें मेरा जो पति जो ब्राह्मण है उनको तुम्हें रक्षा करना चाहिए, और तुम खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो साम भेद तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे इन्हें मनाने के लिए। अब फिर भी वो नरबक्षी राजा नहीं समझ पाए तो क्या स्थिति होता, हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, एनी कमेंट्स? यस ब्रो। हाँ, जितने भी जो प्रजाएं हैं, प्रजा का जो मनु संहिता में वर्णन है कि जो प्रजा के जितने भी कार्य है उस कार्य का आधा जो 50 जो टक्का है वो राजा को भुगतना पड़ता है। अगर प्रजागण अगर पापी है तो उस पापी का जो 50% है वो राजा को भुगतना पड़ता है। तो वो जो राजा अगर ब्राह्मण के आदेश को पालन कर अगर कर रहा है और ब्राह्मण उसको ठीक से उसको शिक्षा नहीं दे रहा है, तब तो फिर ब्राह्मण को भी उसका जो रिएक्शन है वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण समझा रहे फिर भी क्षत्रिय नहीं मान रहा है और क्षत्रिय अपने मनमानी से कार्य कर रहा है, तो फिर ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है। दंडनीय नहीं होता। यहां पर प्रभुपाद भी लिखे हैं परपोर्ट में कि ब्राह्मण स्त्री पुत्र गाय और वृद्ध ये पांच लोग समाज में दंडनीय नहीं माना जाता। इसलिए अगर वृद्ध या स्त्री या बच्चे या गाय इनके प्रति अगर इनके द्वारा भी अगर कुछ होता है तो भी समाज वाले इनकी गलती को नहीं देखते, गलती केवल उस दूसरे के ही देखते हैं और दिखाई देता है। अगर कि सड़क से अगर लड़की भी जा रही है तो उसको उस लड़की भी गलती होगी और फिर यहाँ पर अगर हल्ला गुल्ला हो गया तो फिर लोग लड़की की गलती को नहीं देखेंगे और केवल यही देखेंगे कि वो जो इस लड़का कौन था। या इसी प्रकार वृद्ध का भी, अगर वृद्ध भी अगर किसी को गाली देता है और उसको अगर कोई एक व्यक्ति अगर दूसरा भी गाली देता है तो भी वृद्ध को कोई नहीं कुछ भूलेगा या कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसी प्रकार ब्राह्मण भी, हाँ, ब्राह्मण अगर गलत आदेश देगा तो उसको तो उसे रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, मैं बताया ना, उसको तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसे सही मार्ग बताए। हाँ, दंड प्रकृति के नियम, राजा नहीं देगा, प्रकृति के नियम उसे दंड देंगे। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।